आवृत नहीं है।
प्रवेश करने में अब शादी जो हो, ताला छोड़ो, ये करो वो करो, खुला दरवाजा है। साधारण तरीके से भी आदमी प्रयास करे तो भक्ति कर सकता है। तो क्या दिक्कत है भगवान का नाम जपने में, भगवान का प्रसाद खाने में, प्रणाम करने में कोई दिक्कत है? खुला दरवाजा है जो वैकुंठ जाने का, लेकिन लोग नहीं करते हैं। तो जो मनुष्य शरीर पा करके भजन नहीं करता है उसको विद्वान लोग आरूढ़ च्यूत कहते हैं, बहुत ऊपर से गिर रहा है, बहुत बड़ा घाटा होगा, अधम जोनिया मिलेंगी, बहुत बड़ा चांस चला जाएगा। तो इस प्रकार इस कथा के द्वारा भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि किसी के प्रति संसार में अति स्नेह नहीं करना चाहिए, अति आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अपनी मति को भगवान कृष्ण में लगाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण जय श्री
भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सारस्वत देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यसुतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय प्रयस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वत देव गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाद्देशतारिणे वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज माघ शुक्ल त्रयोदशी है। आज के दिन भगवान श्री बलराम जी बंगाल में नित्यानंद प्रभु के रूप में आविर्भूत हुए थे। प्राय हम लोग गाते हैं निताई गौरांग, तो नित्यानंद प्रभु को ही संक्षेप में निताई निताई कहा करते थे लोग। जैसे कृष्ण शब्द है भगवान का नाम, लेकिन उनको कान्हा कन्हाई कन्हाई कन्हैया कहते हैं। कृष्ण नाम यह सुनो गर्व से कान कान कही बोले। नवीनदास जी ने लिखा है कि भगवान के नाम को ब्रजवासी लोग सुधार लिए हैं, अपने ढंग का करके बोलते हैं, कनुआ कन्हैया कान्हा। तो इसी तरह नित्यानंद इतना लंबा नाम लोग नहीं कह करके निताई निताई कहते। पिताजी का नाम धराई पंडित था और माँ का नाम पद्मावती देवी था, पद्मा। नित्यानंद प्रभु चूंकि स्वयं बलराम जी के अवतार हैं, अतः जन्म से ही श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आकर्षण था। अरे बाल लीला जब करते थे तो बच्चों के साथ ये आविष्ट हो जाते थे, कभी कभी लक्ष्मण के भाव में, कभी बलराम जी के भाव में, प्राय कई बार ऐसा हुआ बिल्कुल शरीर की सुधि बुद्धि भूल जाते थे। लक्ष्मण जी ने जो लीला किया है भगवान श्री राम के साथ, उन लीलाओं की आवृत्ति करने लगते थे और लोग समझते नहीं थे कि क्या हो गया इस बच्चे को। कभी कभी ऐसे बातें थे वही अवस्था में भी, अरे गाँव तुम्हारा मैं बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। लक्ष्मण जब भी जैसे जैसे बोले हैं, जो जो किए हैं, वो आवेश आ जाता था, कभी बलराम जी के आवेश में हो जाते थे। इनकी माँ बहुत चिंतित रहती थी कि हमारे बेटा को कोई भूत लग रहा है। बहुत तरह के लोग आते थे, तैवक के लोग इनके घर, और पंडित जी पूछा करते थे क्या हो गया हमारे बेटा को, इतना सुंदर लड़का है, कभी कभी तो बहुत अच्छा हो जाता है, कभी कभी पागल की तरफ बकने लगता है। कभी कहते थे मैं गाय चलाने जाऊंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कभी गोप भाव में कृष्ण के साथ बलराम जी के आवेश में होते, कभी कभी ऐसे आवेश में होते थे किसी नदी को देखते हैं, अरे जमुने तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें हल से खींच लूंगा, और इस आवेश में खींचने लगते थे। उस तरह का आवेश होता और उस समय पूर्णतः उन्हीं लीलाओं के अनुरूप उनका शरीर हो जाता, शरीर मेघनाथ आकर मेरे सामने। हम कहते थे राम वन मत जाओ, मैं दशरथ को मार दूंगा, भरत राजा नहीं हो सकता, ये करूंगा। इस तरह बहुत आवेश में होते थे। इस आवेश के कारण लोक में ऐसा भ्रम हो गया कि नित्यानंद नाम का जो पंडित जी का लड़का है वास्तव में पागल। नित्यानंद प्रभु बच्चों के साथ खेल में प्राय उन्हीं लीलाओं का खेल करते थे, आविष्ट हो जाते थे। बहुत सी लीलाएं दी गई हैं चैतन्य भागवत में, और वृंदावन दास ठाकुर तो चैतन्य लीला लिखना प्रारंभ किए जैसे चैतन्य भागवत कहते हैं, लेकिन बाद में नित्यानंद प्रभु की लीलाओं में इतना आवेश उनका हो गया कि चैतन्य भागवत का अधिकांश कलेवर नित्यानंद प्रभु की लीला में प्रयोजित हुआ है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य से संयुक्त लिखा और सिद्धांत लिखा, तो वास्तव में दोनों ग्रंथ मिलकर एक होते हैं। वे नित्यानंद प्रभु अपने कृष्ण को खोजने के लिए आवेश में घर छोड़े और शरीर का कोई शरीर की कोई देखरेख नहीं करते। कभी कभी तो किसी किसी समय ये बिल्कुल नग्न हो जाते थे, जानबूझ करके नहीं, आवेश में। कभी ठीक से नहाना नहीं, खाना नहीं, रोना, कृष्ण कृष्ण कह करके खोजते थे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु से कुछ बड़े थे, लेकिन फिर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार हो चुका था नवद्वीप में, और उसी समय ये खोजने गए थे वृंदावन। रो रो करके गोवर्धन में खोज रहे थे, ये नंदगांव में, गोकुल में, वृंदावन में, सब जगह उस समय तो बंद था, बहुत विलाप करते थे। उसी समय आकाशवाणी हुई भगवान के श्रीमुख से कि मैं बंगाल में नवद्वीप में अवतार लिया हुआ, कहाँ आ जाइए। तो उस आकाशवाणी को सुन करके कृष्ण कृष्ण कहते हुए ये नवद्वीप में आए। उस समय नित्यानंद प्रभु बिल्कुल अवधूत के रूप में रहते थे, सार्वभूतम, अवधूत की कथा यहाँ पर चल रही है। तो आज अवधूत त्रयोदशी है, बिल्कुल कौपीन मात्र पहने थे जब नवदीप आए। परम सुंदर गोरा शरीर था, केस बढ़े हुए थे, मुंह पर लटके हुए थे, कौपीन भर पहने थे। आए तो आज जहाँ यीशु उद्यान है, आप लोगों ने देखा होगा इस्कान के बिल्कुल निकट है यीशु उद्यान। वहाँ किनका था, किनका घर था है? नहीं नहीं, किसी का घर था, मैं भूल रहा हूँ उसको। उसी में आकर के रुके हुए चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में उस समय रह रहे थे और कीर्तन अभी चलता था। गया जी से लौट चुके थे, कीर्तन होता था, वही बात कर रहे थे। तो एक दिन दिन का समय था, चैतन्य महाप्रभु कहे अपने भक्तों से कि जाओ एक अवधूत आए हैं, उनको लाओ, खोजो। लेकिन वे लोग गए तो मिले नहीं, और मिले भी तो आए नहीं। उसने तो मिले कहे तो बुलाए कहे नहीं, पर इतना दूर से मैं उसको खोजते हुए आया, वो इतना नहीं आ सकता है। कुछ भक्तों का ये मंतव्य है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं चले अपने भक्तों के साथ नित्यानंद प्रभु, और उस समय नित्यानंद मतलब कृष्ण बलराम जी और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों भाई जब मिले हैं तो वो बिल्कुल अपने ओरिजिनल आवेश में गोप भाव। वो सुंदर बलराम सिद्धांत जी दिखाते थे अपनी गौरांग लीला में वृंदावन, वो दिखे है उस तरह का भाव मिला, लगता है जैसे ओरिजिनल कृष्ण बलराम मिल रहे हैं। वे कन्हैया कन्हैया कह रहे हैं और कृष्ण दाऊ दाऊ जी दाऊ दादा ऐसे कहते हैं मिल रहे हैं। उस समय कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये नाम नहीं बोल रहे, और बहुत दीर्घ काल तक एक दूसरे को कंठ से लगाए रहे मिले। तो चैतन्य महाप्रभु जब लाए नित्यानंद प्रभु को, बहुत तरह से स्वागत किए, और वो तो बिल्कुल कौपीन मात्र पहने थे। और चैतन्य महाप्रभु यद्यपि बहुत श्रृंगार करके रहते थे वहाँ, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भी कहा कि आप ऐसे पहन कर रही है जैसे आज हम उस चित्र में देखते हैं, मुकुट बांधे हुए, बहुत बढ़िया वस्त्र लगाए हुए, माला पहने हुए, और दोनों भाई कीर्तन में खूब नाचते थे। और उस समय से नवदीप में बहुत आनंद छा गया। भगवान कहने लगे कि हमें तो अपना बड़ा भाई मिल गया, बारम्बार यही कहते थे लोग, ये समझते थे कि विश्व रूप के बदले में कह रहे हैं। लेकिन लोग समझते नहीं थे कि वास्तव में ये उनके बड़े भाई हैं। बहुत आनंद छा गया नित्यानंद प्रभु के नवदीप में आने से, दस गुना सौ गुना उत्साह बढ़ गया भक्तों का। उस समय भी अभी नित्यानंद प्रभु यह कहते थे कि मेरा धर्म है, मैं इस तरह श्रृंगार करके नहीं रहूंगा। कभी कभी ऐसे भी वे घूमते थे नवदीप में। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन के प्रचार के लिए योजना बनाए, पहले तो एक आंगन में कीर्तन करते थे, तो नित्यानंद प्रभु को ही उन्होंने अग्रसर बनाया, हरिदास ठाकुर इन दोनों को आज्ञा दिया कि आप लोग प्रचार कीजिए, तो किस तरह भगवान इस जगत में आकर के प्रचार का सूत्रपात किए, यह बहुत विवेचनीय बात है। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर इसके मुख्य पुरोधा बने, पुरोहित। कुछ टोली लेकर के ये भक्तों की चले प्रचार करने के लिए नवदीप नगर में। पहला नगर प्रीचिंग था, नगर कीर्तन। इसके पहले सब चीज पर अपने अपने घरों में करते थे, कोई कीर्तन पसंद करता नहीं था, बल्कि बहुत लोग आलोचना करते थे, ये लोग कीर्तन करते हैं इसलिए सब अकाल पड़ रहा है, अनाज का दाम बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कोई ब्राह्मण थे तो कहते थे ये सब हमारे धर्म की चीज नहीं, इस तरह से नचना गाना जो तो करते हैं ये ठीक है। कीर्तन करना है तो एकादशी के दिन कर लेना चाहिए, वो भी रात में बस हो गया। प्राय ब्राह्मण जो थे काली के पूजक थे, दुर्गा जी के भक्त थे और जयकरण पढ़ने में लगे रहते थे, वाद विवाद यही सब उनका काम। भगवान की महिमा और भगवान के भक्ति में उन्हें थोड़ा भी रस नहीं आता, परंतु भगवान का अवतार हुआ था उन अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए, नाम संस्कृतन का प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने आज्ञा दी। तो उस दिन गांव के लोगों ने, नगर के लोगों ने देखा नित्यानंद प्रभु को गली में घूमते हुए हरिदास ठाकुर को। तो नित्यानंद प्रभु यही कहते थे, जैसे वो गाया गया पर कृष्ण शिक्षा के पहले क्या है, भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा
कृष्ण
नाम जो भी हो। तो नित्यानंद प्रभु इस तरह कृष्ण का प्रचार करते थे और उस आवेश में वे गौरांग का भी प्रचार करते थे। कह गौरांग भज गौरांग लह गौरांग नाम रे जे न गौरांग भजे से तो प्रचार करते थे। बहुत से लोग स्वीकार किए, यही लोग नहीं समझते थे, लोग कहते थे भिक्षा दो भिक्षा दो भिक्षा दो, क्या भिक्षा दो, कुछ देने पर लेते नहीं थे। यही कहते थे कि एक बार तुम कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कहो और हमारे कान को तृप्त कर दो, मेरे कानों में लालसा है, उच्च स्वर से बोलो भैया, तुम्हारे चरण में गिर कर भीख मांग रहा हूँ। तो लोग बोलते थे लेकिन समझते नहीं थे कौन सी भिक्षा है। अंत में कुछ लोगों के मन में मनोरथ हुआ कि यदि ये लोग जगाई मधाई का उद्धार कर देते तो इनका नाम नवद्वीप क्षेत्र में बहुत उजागर हो जाता। कुछ भक्तों के मन में अभिलाषा हुई। नित्यानंद प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, वे उसी तरफ जाना चालू किए और जगाई और मधाई जगन्नाथ और माधव नाम के दो ब्राह्मण थे लेकिन बिल्कुल ब्रह्मराक्षस हो गए थे। जन्म तो बहुत बड़े पिताजी से हुआ था, माँ भी बहुत अच्छी थी लेकिन कुसंग में पड़कर आदमी गिर जाता है। वे लोग पीते थे, खूब शराब पीते थे, मांस खाते थे और व्यभिचार तो उनका दैनिक नियम था, लूटना डाका देना हत्या कर देना किसी की, यही उनका काम था। और वे एक प्रकार के वहां के बादशाह के द्वारा पाले पोसे गए गुंडे थे। एक ही बात उनमें थी, विशेष बात कि वे कभी वैष्णव की निंदा नहीं किए थे और सारा पाप था, कोई पाप नहीं था जिसको गिनाने में छोड़ दिया जा सकता। छिला बड़ पापी रे, छिला बड़ पापी, बहुत बड़े पापी थे जगाई में। तो जब नित्यानंद प्रभु करुणा करके जाने लगे उधर तो बहुत से सज्जनों ने मना किया, आप उधर मत जाइए मत जाइए, वे जान से मार देंगे। बहुत दया के कारण लोगों ने मना किया, अरे इनको क्या हो गया है, क्या विधाता ने आज ही भर जिंदगी लिखी है, क्या किया है, उधर जाना ठीक नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, वो तो किसी को भी पकड़ कर मारने लगते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो दया सिंधु गए और हरिदास ठाकुर भी मना करने लगे, अरे मत जाइए प्रचार करने के लिए, सारी दुनिया खाली है, इधर ही क्यों प्रचार करना, इसी गली में क्या जाना है। और वे लोग नवदीप में भिन्न भिन्न जगह पर अपना टेंट गिराया करते थे, 15 दिन इधर रहे, 1 महीना उधर रहे, तो फिर दूसरे मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में प्रचार कार्य भी चालू हुआ था नित्यानंद प्रभु वे लोग आकर के वहीं रुके डाले थे। हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रचार करना है तो नवदीप इतना बड़ा है, अब दूसरे गली में दूसरे मोहल्ले में किया जाए, यहाँ नहीं जाना है, जब लोग मना कर रहे हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु माने नहीं, गए जगाई में गए, शराब पीकर के उन्मत्त थे, बक रहे थे। नित्यानंद प्रभु गए और नाच की मुद्रा में नाचते जैसे कीर्तन कुछ सुनाए उन्हें अब कहे कि हरे कृष्ण बोलो, तो पहले ये लोग ये समझे कि कोई काली जी का गीत गाता हुआ आ गया, हम लोगों के समान ही पीने खाने वाला, तो जगाई कहता है कि आओ 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 बैठो लो खींचो ऐसे उपाय तो मित्र प्रभु नहीं नहीं ये हमको नहीं चाहिए, तुम हमें भिक्षा दो भिक्षा दो। वो लोग यही समझे कि भिक्षा मतलब एक बोतल चाहता है, आओ लो पियो 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 भाई, ये नहीं ये नहीं बोलो हरे कृष्णा स्वर से,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तुम्हें कुछ समझे नहीं और ये जिद करने लगे थे नित्यानंद प्रभु, और वो लोग समझे नहीं। अंत में जगाई मगाई ने उनको कह दिया कि तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से हटो बहुत से जरूर हो करके, लेकिन ये तो इन्होंने तो प्राण कर लिया कि इनका उद्धार करके ही जाऊंगा, स्वयं भगवान है उनको क्या भय हो सकता है। लेकिन अंत में मधाई बहुत क्रुद्ध हो गया, जगाई तो रोक रहा था उसको कि नहीं नहीं जा रहे हो साधु है कुछ कह रहा है इसको मत मारो, लेकिन शराब की एक हाड़ी थी उठाया हाथ में और नित्यानंद प्रभु के सिर पर मार दिया। ऐसे तो चिन्मय शरीर है भगवान का, उसमें चोट का कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन फिर भी खून निकलने लगा सिर से। जगाई ये वो दोबारा मारने जा रहा था, फिर वो तो फुट ही गया, फिर दोबारा मारने जा रहा था, तब तक जगाई रोक लिया कि मत ऐसा करो। इसके बाद हरिदास ठाकुर और भी जो भक्त थे वे दौड़े चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर कहे कि ऐसी ऐसी बात है, नित्यानंद प्रभु को मारा है मधाई। भगवान सुने तो वही पर बिल्कुल क्रोध में हो गए और चले, बिल्कुल आवेश में। अब करुणा पुरुषोत्तम नहीं रह गए, अब लगा कि अपना सुदर्शन चक्र आदि सब साज बाज करके चल दिए काटने के लिए। यहाँ से तो नहीं, लेकिन वहाँ जब गए तो देखा नित्यानंद प्रभु के सिर से रक्त बह रहा है, तो इसके बाद चक्र चक्र और हाथों में सुदर्शन चक्र आ गया, खतर नाचने लगे। कुछ भक्त कहते आकाश में आ गया था, जहाँ भी आया हो तो सबसे बड़ा अस्त्र जिसके आगे बड़े बड़े असुर भी कुछ नहीं है, तो मधाई क्या हो सकता है। देखा चक्र नाच रहा है तो मधाई भी चरण में गिर गया, जगाई चरण में गिर गया। तो चैतन महाप्रभु का एक नाटक था, वो तो उद्धार करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि अरे दोस्त जिस अंगों का ध्यान करते हैं ब्रह्मा जी शिव जी जिसकी अर्चना होती है उस पर तुमने प्रहार किया है, नित्यानंद प्रभु का शरीर मेरे शरीर से भी मुझे अधिक प्रिय है, तो क्यों किया तुमको मैं मारूंगा तब तक चरण में गिरा, उसको वे आलिंगन नहीं किए, जगाई को ही मारने जा रहे थे। तो किसी ने कह दिया कि प्रभु जगाई तो रक्षा किया, अच्छा नित्यानंद प्रभु ने कह दिया कि ये तो हमको बचाया है, तो चैतन्य महाप्रभु जाकर उसका आलिंगन करने लगे जगाई का, वो तुमने नित्यानंद प्रभु को बचाया है और इसको मारने के लिए तैयार थे। चैतन्य महाप्रभु विकराल रूप हो गया था, चक्र नाच रहा था और मधाई छिटका हुआ था। हमने मधाई ने कहा कि प्रभु हम दोनों भाई एक स्वभाव के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, जब आपने एक भाई पर कृपा किया तो हम पर भी कृपा कीजिए। चरण में गिर गया चेतन महाप्रभु के, लेकिन चेतन महाप्रभु उसको स्वीकार नहीं किए। भगवान चाहते थे कि वो नित्यानंद प्रभु के चरण में गिरे, अंत में नित्यानंद प्रभु के चरण में गिरा, हृदय से लगा लिए और दोनों भाइयों का उद्धार किया। कुछ भक्त ऐसा कहा करते हैं कि उन दोनों को लेकर गंगा जी में जब दोनों भाई गए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम लोग अपना जितना पाप किए हो हमको दो, जल ले करके संकल्प बोल करके हमको दो, सब धर्मान परित्यज्य कम शरण, सारा पाप हमको दो। वो लोग रोने लगे, नहीं 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 हम ऐसा नहीं करेंगे, सब लोग तो आपको क्या क्या अर्पण करते हैं, बलि महाराज आपको प्रतिदिन अर्पण किए और वो ग्वाल आपको दही दूध अर्पण करते हैं, लक्ष्मी जी भोग लगाते, हम पाप अर्पण करेंगे, विश्व में हमारी क्या कथा होगी कि इन दोनों ने पाप अर्पण किया था भगवान को, हम ऐसा नहीं करेंगे नहीं। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं दो दो दो। ये लोग जब अपना पाप दिए तो चैतन्य महाप्रभु काला हो गए, ऐसा कौन है गोरा, कुछ दिखाने के लिए कि पाप आ करके काला कर दिया। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की यह एक बहुत अद्भुत लीला है जगाई बधाई के उद्धार की। इस प्रकार नित्य चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने लगे, बहुत बहुत लीलाएं हैं इनके दूसरे रूप की, मुझे कथा कहनी है और जरूर से उपाख्यान। संन्यास में भी चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, जगन्नाथपुरी गए थे और भगवान का त्रिदंड इन्होंने तोड़ा था, त्रिदंड तोड़ करके और नदी में फेंक दिए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु फिर जब भेंट हुई, ऐसा हुआ कि संन्यास लेने के बाद माता के विनय से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाने लगे, वृंदावन नहीं गए। तो उनके साथ और भी चार व्यक्ति जा रहे थे जिनमें एक नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर और कौन कौन से जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु कहे कि मैं सन्यासी हूँ, मैं और किसी के साथ नहीं चलूंगा, जो घर द्वार छोड़ा तो साथ ही संघाति भी छोड़ूंगा ना, जब सब तुम लोग साथ ही चलोगे तो सन्यास का क्या मतलब, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो लोग कहे कि हम लोग आपके साथ नहीं जा रहे हैं, हम लोग नीलाचल में जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहते हैं, हम लोग जाएंगे। तो वो कहे कि आगे जाओ चाहे पीछे चलो, हमारे साथ मत चलो। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा ठीक है आप आगे चलिए, हम लोग पीछे पीछे चलो। तो इधर पीछे चलने में पता नहीं वृंदावन भाग जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक आप आगे आगे चलो। तो आगे आगे थोड़ा चलते थे, बिल्कुल थोड़ा आगे लोग बैठी करते थे, पीछे चलते थे और शाम को भेंट हो जाती थी या दिन में भी भेंट हो जाती थी। वही छिप से गोपीनाथ में भी साथ रहा, साक्षी गोपाल में भी साथ रहा। तो उसके बाद की बात है कि सब साथ ही चल रहे थे और नित्यानंद प्रभु ने वहाँ थोड़ी दूर पर जब त्रिदंड तोड़ दिया नित्यानंद प्रभु ने, तो प्रभु ने पूछा, प्रभु कहे नित्यानंद कहाँ मोर दंड। नित्यानंद कहे दंड है ला तीन खंड, कहाँ मेरा दंड है। उनका दंड तो तीन खंड होकर नदी में चला गया। अब भगवान अब बिगड़े, कहे कि तुम लोग मेरा सन्यास धर्म नष्ट कर दोगे, बाप रे बाप इससे दंड तोड़ दिया, ऐसे वैसे मैं ऐसे धर्म विनाशक लोगों के साथ नहीं रहूंगा। आपको पता है दंड में 33 लाख देवता रहते हैं, दंड में 33 लाख देवता रहते हैं। नित्यानंद प्रभु कहते ठीक है 33 लाख रहे चाहे 33 करोड़ जो भी रहते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी देवता आपके कपार पर चढ़े कंधा पर रहे। त्रिदंड में इतने देवता हैं तो आपके कंधा पर देवता रहे ये ठीक नहीं। लेकिन वहीं पर नाटक की चैतन्य महाप्रभु कहेगा अब हम तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। चलो कहा ठीक है आगे चलिए। तो आगे वे भावा बहुत तेज गति से चले गए जगन्नाथ मंदिर। नित्यानंद प्रभु के पास चैतन्य महाप्रभु हमेशा प्रकट रहते थे, ऐसा वर्णन किया गया है कि चार लोगों के साथ संन्यास लेने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु हमेशा साथ रहते थे, उनके साथ प्रकट रहते थे। जिसमें भगवान ने आदेश दिया नित्यानंद प्रभु को कि तुम बंगाल में प्रचार करो, गौर में प्रचार करो, ये जा रहे थे तो रोने लगे कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूँ। तब भगवान ने इनको कहा कि मैं आपके साथ नित्य प्रकट रहूंगा। तो नित्यानंद प्रभु इसी के संतुष्ट रह गए प्रचार में बंगाल में, तो उनके साथ चैतन्य महाप्रभु प्रकट रहते थे, दूसरे लोग नहीं देखते थे, लेकिन वे हमेशा देखते थे कि बगल में निमाई है चैतन्य महाप्रभु। बाद में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इनको आदेश दिया था। भक्त कहते हैं आकाशवाणी किया था कि आप विवाह कीजिए और गृहस्थ के धर्म का आचरण करके जनता को सिखाइए, गृहस्थ होते हुए भी किस तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति की जाती है। तो नित्यानंद प्रभु ने जाह्नवा देवी के साथ विवाह किया था जो वैष्णवों का परम गुरु है। बहुत श्री विग्रहों की स्थापना किया जाह्नवा देवी ने जहाँ तहाँ, और समग्र वैष्णव समाज उसमें गौड़ी वैष्णव समाज की नायिका हेड थे। दो विवाह किया था नित्यानंद प्रभु और पुत्र भी उनके हुए। आज भी नित्यानंद वंशज गोस्वामी कुछ जगह सुने जाते हैं। भगवान ने सोचा कि वो तो संन्यास लेकर के सन्यासी को धर्म का आचरण किए, लेकिन गृहस्थ को कैसे भक्त होना चाहिए इसका आचरण करके श्री बलराम जी ने श्री नित्यानंद प्रभु ने बताया। ऐसे जहाँ तक के इस लीला में करुणा की बात है तो दोनों भाई ये कहीं हैं, भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु के आचरण में भगवान ने सोचा कि वो तो संन्यास लेकर के सन्यासी को धर्म का आचरण किए, लेकिन गृहस्थ को कैसे भक्त होना चाहिए इसका आचरण करके श्री बलराम जी ने श्री नित्यानंद प्रभु ने बताया। ऐसे जहाँ तक के इस लीला में करुणा की बात है तो दोनों भाई ये कहीं हैं, भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु के आचरण में विशेष कृपा प्रकाशित हुई है और इनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं। नीता एक करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। कृष्ण अवतार में भी श्री बलराम जी बहुत करुण है, समदृष्टि संपन्न देखे जाते हैं। कोई व्यक्ति इनका इनकी शरण लिया तो उसको सहारा दिए। दुर्योधन तक को गदा जो भी इन्होंने सिखाया, इतनी सेवा तेरे कृतज्ञ, इतने कृतज्ञ। इस प्रकार आज नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है, हमें उनके चरणों में उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, उनके चरण में चैतन्य महाप्रभु के चरण में प्रेम बल है। ये बल है, नायम आत्मा बल ही ने लग है, कोई भी बलराम जी के बिना कृष्ण को नहीं पा सकता है। इस प्रकार भगवान का अवतार हुआ था आज के दिन। अवधूत इनको कहा जाता था, तो हम लोग भी अवधूत के मुख से कथा सुन रहे हैं, कथा चालू करते हैं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण उवाच। सुखमैन्द्रियकं राजन् नरके स्वर्गे नरक एव च, देहिनां यद्यथा दुःखम् तस्मान्नेच्छेत तद्बुधः। सुखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च, देहिनां यद्यथा दुःखम् तस्मान्नेच्छेत तद्बुधः। तस्मान्नेच्छेत तद्बुधः। ग्रासं सुमिष्टं विरसां महान्तं स्तोकमेव वा, जदृच्छैवा पतितं प्रसेद आजगरो क्रियः। शयिताः निभूरेरिः निराहारो नुपक्रमः।
यदि नोपनमेद ग्राशो महाहीरिवतिष्ठ भूत् ओजः सहो बलयुतम् बिभ्रद्देहमकर्णकम् शयानो दीतनिद्रश्च नेहेतेन्द्रियवानपि मुनिः प्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः अनन्तपारो यक्षोभ्यः स्तिमितोदायि वारणवः संविद्धकामो हीनो वा नारायण परो मुनिः नोत सर्पेत न सुस्येत नोत सर्पेत न सुस्येत सरिद्भिरिव सागरः दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नौ पतङ्गवात् योऽसि हिरण्याभरणाम्बरादि द्रव्येषु माया रचितेषु मूढः प्रलोभितात्मा हिपभोगबुद्ध्या पतङ्गवन्नश्यति नष्ट दृष्टिः स्तोकम् स्तोकम् ग्रसेद्देहो स्तोकम् स्तोकम् ग्रसेद्ग्राशाम् देहो वर्तेत यावता गृहान् हिंसनातिष्ठे वृत्तिम् माधुकरीम् मुनिः अनुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः सायन्तनम् स्वस्तनम् वा सायन्तनम् स्वस्तनम् वा न सङ्गृहीत भीक्षिताम् पारिपात्रोदरामत्र मक्षिकेव न सङ्ग्रही सायन्तनम् स्वस्तनम् वा न सङ्गृहीत भिक्षुकः मक्षिका इव सङ्गृह्णन् स तेन विनश्यति पदापि ज्योतिम् भिक्षुः न स्पृशेद्दारणीमति स्पृशन् करीव बध्येत करिण्यायङ्गसङ्गतः नाधिगच्छेत् श्रियम् प्राज्ञः कर्हि चिन्मृत्युमात्मनः बलाधिकैः स हन्येत गजैः अन्यैर्गजो यथा न देयम् नोपभोग्यम् च लुब्धै जग्दुःखसञ्चिताम् भुङ्क्ते तदपि तच्चान्य मधुरे वार्थवि मधु सुदुःखोपार्जितैर्वित्तैः आशासानाम् गृहाशिषः मधुरेवाग्रतो भुङ्क्ते जतिर्वै गृहमेधिनाम्
ब्राह्मण उवाच
ब्राह्मण अवधूत ने कहा, सुखम सुख ऐन्द्रियकम, इंद्रियों से अनुभूत होने वाला, राजन हे महाराज चलो, स्वर्गे स्वर्ग में, नरके नरक में, एवा ही समान रूप से, चा और देहिना देहधारियों को, जात जो, चथा जैसे, दुखम दुख, तस्मात इसलिए, न न इच्छे इच्छा करे, तत् इंद्रियक सुख के लिए, बुधा विद्वान अथवा तत् बुधा बिना इच्छा और प्रयास के ही इंद्रिय सुख मिल जाता है सब जगह, इसको जानने वाला। अष्टमे अजगराभ्यो नवभ्य शिक्षित हरि अवधूत गिरा प्राह विवेकायोद्धव प्रति। इस अष्टमे अध्याय अजगर से प्रारंभ करके और पिंगला पर्यंत नौ गुरुओं से सीखी हुई बात को भगवान श्री कृष्ण अवधूत के वचन से उद्धव जी को विवेक के लिए कह रहे हैं। विवेक आया मतलब विवेक है, विवेकम जनयितु, विवेक उत्पन्न करने के लिए। विवेक का अर्थ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक ठीक जो बुद्धि का निर्णय होता है इसको विवेक का। तो इस आठवें अध्याय में नौ गुरुओं के मुख से, नौ गुरुओं के आचरण से शिक्षा ली गई है। और कितने गुरुओं की शिक्षा बीत गई, आठ, और इसमें नौ, और अगले अध्याय में सात गुरुओं के मुख से, मुख से नहीं उनके आचरण से शिक्षा ली जाएगी। सावधानी से सुनिए क्योंकि इसमें महाराज जदु को संबोधन किया गया है, राजन, हे राजन। राजनीति राज्यस्य अपि विषय सुख सुखम अंतः पातित्वेन हेयत्व में सिभाव। तो भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं कि हे राजन, इंद्रियकम सुखम स्वर्गे नरके एवच सुलभ भवति यथा दुख। जिस प्रकार देहधारियों को सब जगह दुख मिलता है और अपने आप बिना प्रयास के, दुख के लिए कभी कोई उपाय नहीं करते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, ना तो दुख चाहते हैं देहधारी प्राणी, लेकिन दुख अपने आप आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रारब्ध है पहले का पाप है, प्रारब्ध है कि उसके चलते दुख आएगा ही, नहीं चाहने पर भी, नहीं बुलाने पर भी, कोई उपाय नहीं करने पर भी दुख आ जाता है। इसी तरह जब प्रारब्ध के बस दुख आ रहा है तो प्रारब्ध के बस सुख भी आएगा, क्योंकि दोनों तरह का कर्म जीव किया है, अपने आप आएंगे। इसलिए तद बुधा इस बात को जानने वाला कि ये सुख है या दुख है प्रारब्ध के अधीन है, वो मिलेंगे, अतः उसके लिए सुख के लिए न इच्छे पर इच्छा न करे कि हमें मिले ये मिले वो मिले, क्योंकि बिना इच्छा किए ही मिलेगा, और न ही प्रारब्ध में है तो इच्छा करने से भी नहीं मिलेगा। जो अपने आप मिलने वाला है उसका चिंतन क्या करना है, उसकी क्या इच्छा करनी है, और फिर प्रयास करने की तो बात ही नहीं, प्रयत्न करना, जुगाड़ करना। जैसे आदमी पैसा कमाने के लिए उपाय कर रहा है, अन्न उत्पन्न करने के लिए उपाय कर रहा है, और कई कई तरह का उपाय कर रहा है, इसको जप्न कहते हैं, काम धंधा करना, प्रयास करना। तो इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, फिर प्रयास करने की तो बात बहुत दूर है। इन इंद्रियकम सुखम, इंद्रियों से जो उत्पन्न होता है सुख, वास्तविक सुख उसको भगवान नहीं कह रहे हैं, इंद्रियकम सुखम कह करके उसके सुखत्व का बाध कर रहे हैं। तो सुख नहीं है, लेकिन इंद्रियों का ऐसा अनुभव होता है कि यह सुख है। जैसे आंख कोई सुंदर रूप देखती है तो सोचती है कि मैं सुखी हो रही हूँ, जिह्वा कोई चटकदार पदार्थ खाती है तो सोचती है कि मैं सुख ले रही हूँ। एक अनुकूल वृत्ति का उदय होता है मन में और इंद्रियों में, इसको सुख कहते हैं, लेकिन वो भ्रांति है। जो कुछ भी हो अगर उसको कोई सुख ही मानता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस सुख के लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए और न जत्न करना चाहिए, क्योंकि जैसे बिना बुलाए दुख आते हैं उसी तरह से सुख भी आएंगे, अनेक प्रकार के सुख, ये प्रयास नहीं करना चाहिए, यह शिक्षा है। प्रारब्ध कर्म भोगस्य अवश्यम भारित्वा तदर्थो व्यमय नायु देव प्रथा कर्तव्य अजगर शिक्षित सुखम इत्यादि। प्रारब्ध कर्म भोगना ही पड़ता है, अतः प्रारब्ध भोग के अधीन, प्रारब्ध कर्म के अधीन रहने वाला सुख अपने आप मिलेगा। अतः सुख प्राप्ति के लिए बहुत बहुत उद्यम करके आयु को वृथा नष्ट नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति में आयु को बिताना चाहिए। यह शिक्षा अजगर की वृत्ति से, अजगर के आचरण से मैंने लिया है, भगवान यह बता रहे हैं। इंद्रियकम इंद्रिय प्रभवम सुखम जथा स्वर्गे भवति तथा नरके अपि भवति। स्वर्ग में जितना सुख है वास्तव में नरक में भी सुख है। नरक में भी प्राणी को, नरक मतलब नारकी जो सुअर आदि के शरीर में भी, वो सुलभ है। ऐसा अपनी अपनी मान्यता है कि इंद्र को रंभा या उर्वशी का आलिंगन करके जो सुख होता है वही सुख एक सुअर को मलमूत्र से लिपटी हुई सुअरी का आलिंगन करके होता है, कोई सुखानुभूति में भेद नहीं है। यह जो प्रसिद्ध नरक है वहाँ भी प्राणी को कुछ देर के लिए सुख मिलता है, मारपीट करते हैं जब राज के दूत और कभी कुछ खाने को दे दिए तो उसी में सुख मानता है थोड़े देर के लिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि किसी अपराधी को नदी के जल में डुबाया जाता है, राजा के कर्मचारी डुबाते हैं, परंतु थोड़ी देर के लिए उसको ऊपर लाते हैं जल से तो सोचता है ओहो बहुत आराम मिल गया, लेकिन फिर उसको डुबाते हैं। तो सुख की जहाँ तक बात है वो सब जगह सुलभ है, जैसे दुख जथा दुख। नरके मतलब शुक्रादि नारक्याम योनवपि पुत्र कलत्रादि सुख दर्शनात्। देखा गया है कि सुअर आदि को भी पुत्र के स्पर्श का या स्त्री के स्पर्श का, परिवार चलाने का सुख मिलता है, वो भी सुखी रहते। कल हम लोग देख रहे थे शाम को दो सियार सियारिन बड़े तंदुरुस्त, भक्त लोग आपस में सोचने लगे ये क्या खाते हैं, कहाँ से भोजन मिलता है, प्रारब्ध दे रहा है, कहीं न कहीं से खा करके ही तो उतना तंदुरुस्त थे और निश्चिंत हैं, उनको न खाद जुटाना है, न बीमार होने पर डॉक्टरी में जाना है, कुछ नहीं, और घर द्वार अपने आप खान करके तैयार किए रहते हैं। मेर में घर बना करते रहते। जब सियार आवाज करते हैं तो हमेशा दुख से ही आवाज नहीं करते हैं, कभी कभी खुशी से हुआ हुआ करने लगते हैं, मस्त। और कुत्ते भी खुशी से नाचते हुए देखे जाते हैं, सुअर भी खुशी से नाचते हुए देखे जाते हैं, बल्कि मनुष्य उतना खुश नहीं रहते, हमेशा चिंता में लगे रहते। हाँ, दूसरे का सुख देखकर जलते भी, ये पशुओं में ही बात नहीं। तो सियार और सुअर, गधा, कुत्ता, ये सब भी सुखी देखे जाते हैं, वहां भी सुख मिल जाता है, क्योंकि सुख सब प्रारब्ध के अधीन है। स्वर्गे नरके वचन एवं शब्द है, यह कारक नरक और स्वर्ग में भेद नहीं है, जो सुख लिखा है प्रारब्ध में मिल जाएगा, प्रयास से कुछ नहीं मिलता है, पहले के कर्म के अनुसार मिलता है। तो अब इस समय जो अपने आप मिलने वाली वस्तु है उसके फेर में पड़ करके अपने समय बिताना ठीक नहीं, क्या फायदा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी यह चिंता करने लगे कि कब हमको कलरा होगा, कब बीमार पड़ूंगा, तो बीमारी सोचने से नहीं पड़ेगा, जब समय आ जाएगा प्रारब्ध उपस्थित होगा तब वो अपने आप हो जाएगा, तब भागेगा अस्पताल में बचने के लिए। तो इसी तरह से सुख आएगा, तो सुख के लिए न चिंतन करना है और न काम करना है, इंद्रिय सुख के लिए। और इंद्रिय सुख चूंकि लक्ष्य है नहीं, वो आत्मा का सुख नहीं है, इंद्रिय का सुख है, तो इंद्रियों को तृप्त करने के काम में नहीं लगना चाहिए, वो अपने आप आएगा। खास करके इस संसार में इंद्रियों का सुख है, पुत्र कलत्र आदि के साथ होना, सुख रहना, खाना पीना, स्पर्श करना, यही सुख है इंद्रियों का, ये मिलता है अपने आप। देखा गया है कि सुकर आदि को भी स्त्री रखने का, पुत्र उत्पन्न करने का सुख मिलता है। जथा दुखम प्रयत्नम बिना लभ्यते तथा सुखम अपि लभ्यते, तस्मात् बुधो विवेकी एवं निश्चित्य तद इंद्रियकम सुखम न इच्छेत, इंद्रिय सुख की इच्छा न कर। प्रारब्ध भोगस्य अवश्यम भावित्वा तदर्थोद्यमे वृथा आय व्यय न कार्यति। तो जब इंद्रिय सुख सुअर आदि को भी मिलता है तो इसका मतलब है कि यह तुच्छ है, नरके अति से भी राघव कह रहे हैं किंचित अन्न पानादि जन्यम सुखम विद्यते, वहां भी सुख है। जैसे कारागृह है तो कारागृह में कैदी बंद रहते हैं, किसी को श्रृंखला पहनाई होती, सीकर लगाए रहते हैं, रेड़ी हथकड़ी भी किसी किसी को लगाए रहते हैं, लेकिन वहां भी भोजन की व्यवस्था रहती है। जिस समय भोजन मिलता है खाने को उस समय वो कैदी सारा दुख भूल जाता है। तो कारागृह में पड़ा है फिर भी उसको कुछ देखने सुनने सुनने के लिए मिल जाती है चीजें। तो इसी प्रकार नरक में भी सुख मिलता है, स्वर्ग में भी तो है, अतः कहीं भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि देही ना, वो देही है, देही का अर्थ है देह वाला। जैसे कोई कर्म किया है विशेष तो उसके अनुसार देह मिला है, तो देह को चलाने वाला कर्म भी उसका है, देह मिलना ही उसके लिए प्रमाण है कि उसको देह चलाने वाली वस्तुएं आगे मिलेंगी, इसलिए देहिना में कहा गया देह वालों को। भगवान ने जब देह दिया है तो उसके साथ ही देह कैसे चलेगा वो कर्म फल भगवान भेजते रहेंगे। देह के लिए जो देखना जरूरी है, सूंघना जरूरी है, स्पर्श करना जरूरी है, और देह के लिए जो खाना जरूरी है वो सब भेजा जाएगा। जैसे कैदियों के लिए जब सरकार कैदी बनाती है किसी को तो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किस घर में रहेगा, वो सरकार ही सोचती है। तो कैदी अपने लिए घर उठाकर नहीं ले जाता है, और न तो भोजन ले जाएगा। देही शब्द एक तथ्य की सूचना दे रहा है कि जब देह जिस प्रकार से मिला है तो देह को चलाने वाला सामान भी मिलेगा, चिंता नहीं करनी चाहिए। तो सर्वत्र मिलता है सुख इंद्रियों का, अतः उसको कमाने में, इकट्ठा करने में, संचय करने में वृथा आय व्यय नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यह सिद्धांत कह करके और इसको दृष्टांत द्वारा बता रहे हैं। जब ऐन्द्रियकम सुखम तत् स्वर्गे नरके च भवति एव, यह जब शब्द का प्रयोग किया गया है और बाद में तत्, तो जो सुख इंद्रियों का है, इंद्रियों को ऐन्द्रियक जो सुख है वो स्वर्ग में भी और नरक में भी मिलता है। तो संसार में सब लोग तो केवल इंद्रियों के सुख को इकट्ठा करने में अपनी सारी आयु खर्च करे, दिन भर बैठे रहते हैं दुकान में, काम में, सब जगह, लेकिन आत्मा की उन्नति के लिए एक मिनट भी काम नहीं कर रहे। जो वस्तुएं मिलेंगी उन्हीं उन्हीं वस्तुओं के लिए प्रयास हो रहा है। तो इस संतोष सीखना चाहिए वास्तव में। ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम स्तोक में वा जदृश क्षय व पतितम ग्रसित आज गरो अक्रिय। शरीर निर्वाह मात्रम तु जथा लब्धेन कर्तव्य नित्या। शरीर निर्वाह है, जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष पूर्वक करना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि शरीर चलाने के लिए भोजन करना है कि भोजन करने के लिए शरीर चलाना है। ये दो थ्योरी है, सब लोग में कहते हैं खाना जीने के लिए है कि जीना खाने के लिए है, क्या है वास्तव में? जैसे हम पूछें कि आदमी जाकर के डीजल भरवाता है बस में या जीप में, तो डीजल भरवाने के लिए गाड़ी चलाई जा रही है कि गाड़ी चलने के लिए डीजल भरा जा रहा है? गाड़ी चलने के लिए डीजल भरा जा रहा है, तो जितना से बढ़िया से गाड़ी चल जाए उतना ही भरना चाहिए ना, कि पूरा भीतर भी आदमी के सीट पर भी इधर उधर सब भर देना चाहिए डीजल। जितना से बढ़िया से चल जाए उतना ही भरना चाहिए। यह गाड़ी भी मनुष्य शरीर है, जितना से चल जाए, जिससे इसका निर्वाह हो जाए उतना ही खाना चाहिए। और जब जो कुछ बहुत बिना प्रयास के बिना मांगे मिल गया उसी से बस निर्वाह करना चाहिए। ध्यान रखिए कि ये तो विशेष करके सन्यासियों के लिए बात कही जा रही है, नहीं गृहस्थों को भी इसमें से कुछ प्रतिशत लेना चाहिए। गृहस्थों को भी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र नहीं रहना चाहिए। साधु को तो 100% इसको लेना है, लेकिन गृहस्थ को भी कुछ प्रतिशत इसमें से लेना। ग्रासम सुमृष्टम वीरसम महांतम स्तोक में वा जद्रिच्छया एवं आपतितम ग्रसित आज गुरु क्रिय। मनुष्य को चाहिए, खास करके विरक्त महात्मा को, कि वह आजगर हो जाए। आजगर का अर्थ है कि अजगर की वृत्ति में स्थित हो, आजगर हो करके, मतलब अजगर की वृत्ति, अजगर का स्वभाव बना करके और पड़ा रहे। पड़ा रहने का मतलब यह नहीं कि अजगर जैसा सोया रहे, तो अजगर जैसे भोजन के लिए कोई नौकरी नहीं करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यू कहे सबके दाता रहा। अजगर का भोजन बहुत ज्यादा होता है। अजगर का ऐसे अर्थ ही होता है अज मन बकरा, गर मन गला, बकरा जिसके गले में अट जाए उसको अजगर कहते हैं। इतना बड़ा साफ होता है, इसीलिए आगे चलकर उसको महाही महाअही भगवान कह रहे हैं। भोजन बहुत ज्यादा है लेकिन काम बिल्कुल नहीं, काम धंधा अजगर नहीं करता है, पड़ा रहता है और प्रारब्धवश कोई न कोई बकरा या कोई न कोई छोटा जीव आ ही जाएगा और उसको पकड़ लेता है और धीरे धीरे खाए, और नहीं मिलता है तो बहुत दूर तक जाता नहीं है, अजगर जहाँ रहता है वहीं रहता है। आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे अजगर बहुत दूर इधर उधर नहीं जाता है भोजन के लिए, जैसे मनुष्य देश परदेश सब जगह घूमता है अपना खर्चा जुटाने के लिए, वैसे वो नहीं होता। अजगर अजगर की वृत्ति वाला साध लिए अक्रिय उदासीन रहे, अक्रिय अकार उदासीन क्रिया शून्य रहे, कोई काम न करे खाने के लिए, वृत्ति जुटाने के लिए कोई काम न करे, 24 घंटा केवल भगवान के भजन में रहे, यह अर्थ है अजगर जैसा रहे। और ग्रास जैसा मिले वैसा ही खाए, हो सकता है कि अजगर को कभी केवल बिस्कुटी अगर मिले तो उतना ही बस एक और खा करके रह जाते, या कोई छोटा सांप मिले उसको, या नेवला मिले, या चूहा मिले, जो भी मिला अपन खा लिया। तो भोजन यहाँ ग्रास शब्द भोजन के लिए है, ग्रासम सुमृष्टम, भोजन चाहे खूब मीठा हो, मृष्ट का अर्थ होता है शुद्ध और मधुर, तो भोजन खूब स्वादिष्ट मिले तब भी, या विरसम या विगत रसम, बासी मिल जाए या रूखा सूखा या ज्यादा पीता पड़ा हो, जो मिले खा ले। महानतम और कभी कभी बहुत महान भोजन मिल जाए, महान मतलब भर पेट, कभी भर पेट में मिलेगा और कभी स्टोक, स्टोक माने छोटा। यहाँ का सबसे छोटा भोजन की माप है भोजपुरी में माछी के मूड भर, सबसे छोटी इकाई भोजन की माछी के मूड सबसे छोटा लगा कहते इका दिले बड़े माछी के मूड भर।